ओम शांति। जो कल चलने वाली अवैक्तवाणी है 21/12/83, उस वाणी का सा यानी हेडिंग है यानी तुरंत दान महापुण्य का रहस्य है। तो उसके आधारित हमें जो होमवर्क मिला था यानी धारणा के कुछ पॉइंट निकालने, तो जैसा धारणा स्वरूप अर्थ यानी धारणा अर्थ स्वरूप बनना, जैसे हम बच्चे भी जो भी ज्ञान सुनते हैं उसके यानी सुनकर अपने में धारण करके स्वरूप बनते हैं और जब किसी को सुनाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो वैसे अपने यज्ञ में ब्रह्मा बाबा और मम्मा इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जो भी ज्ञान सुनाते थे तो सुनने वाले पर क्या होता, उसका प्रभाव पड़ता था और उन लोगों में ऐसा परिवर्तन हो जाता था। तो इसका यही कारण था कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा जो भी ज्ञान यानी दूसरे को सुनाते थे तो पहले धारण करके उसका स्वरूप बनते थे और फिर सुनाते थे। तो ऐसा हम बच्चे को भी ज्ञान गुण और शक्तियों को अपने जीवन में धारण करो तो पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो उसके आधारित हमें जो बताया गया था 7 पॉइंट निकालने हैं, तो हमने जो पॉइंट निकाले 7, तो उनमें से पहला पॉइंट है तुरंत दान महापुण्य, यानी जब किसी समय पर यानी किसी जरूरतमंद को हम कोई दान करते हैं या मदद करते हैं तो उसका कई गुना फल हमारे खाते में जमा होता है। इस पर मुझे एक महाभारत की एक बात याद आती है कि उसमें ऐसा लिखा है कि द्रौपदी यानी पहले जन्म में नारी थी बोलती, तो एक दिन जी हाँ तो पहले हो सकता है दो ही जन्म उसके नारी की मिली होंगी, तो पहले जन्म में नारी थी। एक दिन वो नदी पर पानी भरने के लिए जाती है तो वहां पर एक बूढ़े ब्राह्मण स्नान कर रहे होते है, तो यानी संयोगवश उसकी जो लंगोट है वो पानी में बह जाती है, तो शर्म के मारे वो बाहर आ भी नहीं सकता है वो, क्योंकि बाहर महिलाएं खड़ी रहती है तो, और ठंडी का समय रहता है बाहर बहुत ठंड रहती है तो ठंडी में कांपता है। तो द्रौपदी का उसकी तरफ ध्यान जाता है, वो सारी बातें समझ जाती है, तो वो क्या करती है अपनी साड़ी की छोटी सी चीर फाड़ कर उसकी तरफ फेंक देती है। तो वो बूढ़ा ब्राह्मण कैसा भी लंगोट बना करके बाहर निकल जाता है और बाद में दिल से द्रौपदी को आशीर्वाद देता है कि बेटी आपने मेरी इज्जत का यानी लाज रखी तो भगवान आपकी भी लाज रखेगा, तो ऐसा उसने दिल से आशीर्वाद दिया। तो दूसरे जन्म में क्या हुआ ये आपको सबको तो पता ही है, क्योंकि जब उसका चिरण हो रहा था तो भगवान ने उसको मदद की, उसकी लाज की रक्षा रखी। तो कहने का भाव यही है कि जब हम किसी को समय पर यानी कुछ दान कर दिया मदद करते हैं तो जो भी फल है वो कई गुना हमें हमारे खाते में जमा होता है। तो बाबा ने वैसा बोला है कि दान तुरंत दान यानी समय पर दान किया तो उसका फल भी कई गुना मिल जाता है। तो जैसा बाबा का डायरेक्शन मिलता है हमें और डायरेक्शन मिलते ही हम क्या करते हैं यानी यज्ञ सेवा करते हैं, तो यज्ञ सेवा करने का हमें ताजा फल मिल जाता है। तो जो ताजा फल की प्राप्ति होती है हमें तो उस प्राप्ति से हम आत्मा शक्तिशाली बन जाते हैं और पुरुषार्थ में यानी तीव्रता आ जाती है। तो ब्रह्मा बाबा का यही कहना है कि मेरा हर एक बच्चा यानी पुरुषार्थ में तीव्र आगे बढ़े। तो ब्रह्मा बाबा के जो ये संकल्प है वो हमें स्मृति में रखते हुए हमें भी क्या करना है यानी तीव्रता से आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हर समय यानी हर कर्म का यानी श्रेष्ठ फल खाते रहना है, तो उसी आधारित हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये है ना, तुरंत दान करने से हमें फल श्रेष्ठ फल मिलता है ना, तो दान का ये महत्व है, फल मिल जाते हमको। और जैसा ब्रह्मा बाबा ने भी ये कहना है कि हर एक बच्चों के प्रति कि जैसे जो भी समय अनुसार हमें श्रीमत मिलती है, जो भी श्रीमत मिलती है जिस रूप में मिलती है उसी रूप में यदि हमने वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाया तो क्या होता है ब्रह्मा बाप समान हम दानी बन के एक नंबर में आ सकते हैं। ये हुआ दान का। दूसरा बाबा ने बताया धारणा का पॉइंट, मुरली से हमने अभिवक्तवाणी से निकाला है कि जो सेवा करते तो सेवा का ताजा मेवा मिल जाता है। तो बाबा ही बोलते हैं ना कि जो मेवा खाने वाले तंदुरुस्त बनते हैं। तो बाबा ने सेवाधारियों का विशेष गायन किया है कि सेवाधारी अर्थात भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि उसके लिए बाबा ने मिसाल दे भक्त लोगों का मिसाल दिया है कि जो भक्त आत्माएं है वो क्या करते हैं, यादगार चित्र के सामने जा करके यानी वह सेवा करते हैं। तो वो सेवा का क्या होता है उनका, यानी महापुण्य यानी माँ भाग्य बनता है उनका। माँ भाग्य वो समझते कि हमने सेवा की तो हम माँ पुण्यवान आत्मा बन गए, ऐसे समझते है वो। तो हम कहाँ पर हैं, हम तो श्रेष्ठ मधुबन महातीर्थ पर, यहाँ पर जितनी सेवा करते हम तो हम तो भाग्यशाली बन ही जाते। दूसरी बात वो यानी तीर्थ पर जाकर सिर्फ चक्कर लगाकर आ जाती है तो भी वो अपने को क्या समझते हम महा भाग्यशाली है, ऐसा गायन होता है उनका। तो वैसा बाबा ही बोलते कि तुम आत्माएं कहाँ पर सेवा करते हैं, महातीर्थ मधुबन में सेवा करते हैं, तो हम पहले श्रेष्ठ भाग्यशाली बन गए हैं। तो ये सेवा का बाबा ने महत्व बताया है। और हम भी जब सेवा तन मन से सेवा करते हैं तो क्या होता है, सेवा में बिजी रहेंगे तो माया भी हमारे पास आ नहीं सकती है। तो इसलिए बाबा बोलते जो भी समय पर अच्छी सेवा करते हैं तो उनका भाग्य बनता है, और जो भी लास्ट में सेवा करेंगे यानी बच्चे उनको यानी बाबा बोलते लास्ट तक वो भूखे नहीं रहेंगे, जो सच्चे दिल से सेवा करते वो सेवाधारी वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। तीसरा सेवा का पॉइंट है, सॉरी धारणा का पॉइंट है कि बाबा ने संगम युग का समय का जो महत्व है वो स्मृति में रखो बोलते। जैसे हमारे लिए संगम युग है तो संगम युग का कितना महत्व है, क्योंकि इस संगम पर भी हमें बड़ी ऊंची लैटरी मिलती है, और संगम पर बाबा ही हमें हीरे जैसा देवता समान बनाती है, देवताएं बनाती है। तो जो बच्चे ये संगम का समय स्मृति में रखते हैं वो अपना समय क्या वेस्ट नहीं करेंगे कभी, क्योंकि समय को सफल करते रहेंगे। और दूसरी बात है कि इस संगम पर ही भगवान हमें बाप के रूप में मिलता है, तो बाप के रूप में मिलने के कारण क्या होता है हम वर्षे के अधिकारी बन जाती है, और बाप से यानी हमें मेरे बन की अनुभूति होती है। तो ये संगम का महत्व है इतना। और चौथा धारणा का पॉइंट हमने निकाला है कि हम आत्मा है, समीप बनना है हम आत्मा को, यानी समीप अर्थात जैसे बाप का संकल्प है बोल है और कर्म है वैसे हमारे भी हो, तो तब हम बाप समान बन जाएंगे, यानी समीप बन के समान बन जाएंगे। और जो बच्चे समीप रहते हैं वो क्या होते हैं, बाप समान बन जाते हैं। तो बाबा ही बोलते हैं कि जो दूर रहने वाले बच्चे दूर के बच्चे तो वो क्या होते हैं, यानी अंचली लेने वाले होते हैं, मगर हम क्या नजदीक के बच्चे तो हम अधिकारी बच्चे देने वाले होते हैं। तो हम बाप के समीप है, तो जैसे बाप का बोल और संकल्प है वैसा ही हमें अपने में कर रखना है, तो हम भी बाप समान बन जाएंगे। तो और चौथा पॉइंट है, हाँ पांचवा पॉइंट है धारणा का कि यानी इस शरीर से ममत्व निकालना है हमें, क्योंकि बाबा ही बोलते हैं कि शरीर से ममत्व निकाल दो। शरीर से ममत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शरीर जीते ही मरना पड़ेगा हमें। तो बाबा ही बोलते हैं कि ये छीची शरीर है इस समय का, तो ये शरीर से बाहर निकाल दो और हमें जो नया शरीर लेना है उसको स्मृति में रखो। तो क्या हो जाएगा, ये यानी शरीर की स्मृति निकल यानी शरीर भान जो निकल जाएगा। और आत्मा का सबसे प्यारा क्या है, ये शरीर भी सबसे ज्यादा प्यार वो शरीर के साथ ही करता है, क्योंकि जब छोड़ने की नौबत आती है तो कई प्रयत्न करके आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहती। तो इस पर एक बंदरिन का एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, सबको तो पता होगा कि ये बंदरिन रहती बंदरी उसका यानी अपने बच्चे में बहुत मोह रहता है, क्योंकि वो मर भी जाता है तो अभी उसको छोड़ती नहीं वो। तो ऐसी वो बंदरी एक बार नदी पार कर रहती है, पार करती है तो उस समय वो अपने बच्चे को अपने सिर पर रख देती है और पार करती रहती है। अचानक पानी का बहाव बढ़ जाता है, पानी एकदम उसके सिर तक आ जाता है, तो वो क्या करती है वो बच्चे को तुरंत वहां से उठा करके अपने पाँव के नीचे रख देती है और उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और अपना जान बचा लेती है। तो इस प्रकार आत्मा भी यानी शरीर से इतना मोह है आत्मा का कि वो शरीर छोड़ना नहीं चाहती। तो हमें बाबा बोलते हैं शरीर से ममत्व निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा, आत्मस्मृति में रहना पड़ेगा, बोध काल का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्टार्टिंग में क्या किया, यानी आत्मिक आत्मा का अभ्यास किया और मैं आत्मा हूँ यानी, और वो लिखता भी था, इस प्रकार आत्मस्मृति से उसने ये किया, देह का ममत्व निकाल दिया। छठवां पॉइंट है यानी बालिक से मालिक बनना है हमें, तो उसका जो भी समय हो गया अभी, तो वो मैं खाली पॉइंट भी सुनाता हूँ कि किस समय बालक बनना है और किस समय मालिक बनना है। तो बाबा ही बोलते इसको उल्टा नहीं करना है, क्योंकि किसको राय देनी है और किसी का हमें कार्य करना है तो उस समय मालिक बन जाओ, और किसी निमित्त आत्मा होने कोई यानी विशेष बात का फाइनल किया तो उस समय क्या बन जाओ, बालक बन जाओ। तो इस समय यानी कब राय बहादुर बनना है और कब यानी राय मानने वाला बनना है, तो ये हमें उसी अनुसार बालक से मालिक बनना है। और सातवां पॉइंट है परिवर्तन करना है हमें, यानी हमें परिवर्तन शक्ति को धारण करना है। तो परिवर्तन शक्ति को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी प्लान बाबा बताते वो प्रैक्टिकल में धारण करने के पहले यानी हमें वो परिवर्तन शक्ति अपने अंदर धारण करनी, जितनी परिवर्तन शक्ति हम अपने अंदर धारण करेंगे उतनी निर्णय शक्ति को भी हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल ला सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। मुझे जो मेथड मिली थी भविष्यवाणियां, तो इस मुरली में तुरंत दान महापुण्य, इस मुरली में बाबा ने तो पहली बात कही है फल का एग्जांपल दिया है कि ताजे फल खाएंगे तो कैसे हेल्दी रहेंगे, उसको रख के फिर सुखा करके नहीं खाना है बाबा ने कहा नहीं, लेकिन यहाँ पर बाबा ने ताजे फल की बात की है, ड्राई फ्रूट के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो एक जो पहली जो भविष्यवाणी है वो है कि कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी व व्याधि आ नहीं सकती। कब नहीं आएगी, जब ताजा फल, ताजा फल, लेकिन कौन सा ताजा फल बताया बाबा ने, सोचा और किया तुरंत। इसमें कहा कि सदा ब्रह्मा बाप के संकल्प को स्मृति में रखना है और हर कर्म का श्रेष्ठ और ताजा फल खाते रहना है। दूसरा है कि दिल्ली के बारे में बाबा ने इसके अंदर तीन भविष्यवाणियां की है। बाबा ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक क्या है, इस वृक्ष का शोभा है, सेवा के वृक्ष का, और जो बीज है बाबा ने कहा गुप्त है। तो बाबा ने कहा आवाज भी यही से निकलेगी, बीज इस धरनी पर पड़ा है तो आवाज भी वही से निकलेगी। सेवा का स्थान जो है पहला फाउंडेशन दिल्ली है तो राज्य का स्थान भी वही बनेगा, ये भविष्यवाणी है। फिर बाबा ने कहा कि जहां ब्राह्मणों के पहले पांव पड़े तो वही से राज्य का स्थान बनेगा। तीसरा है कि विदेश के बारे में बाबा ने कहा कि विदेश वाले क्या करेंगे, नगाड़ा बजाएंगे, उससे भारत वाले जाग जाएंगे। तीसरी है, चौथी, तन से स्थूल सेवा करो और मन से वातावरण की। तो इस डबल सेवा से क्या होगा, कौन क्या होगा, इससे डबल सेवा होंगी। यहाँ पर बाबा ने प्राप्तियों की लिस्ट ही गिनाई है, ये सेवाधारियों के साथ है। मन से क्या होगा, बाबा ने कहा कि अगर डबल सेवा करेंगे तो मन का लाभ होगा, तन का भी लाभ होगा, धन अकिचार अथाह मिलेगा, मिलना ही है, बाबा ने शब्द यूज किए हैं कि मिलना ही है। अगला है, बाबा ने सेवाधारियों के प्रति कहा कि जो सच्चे सेवाधारी है, डबल सेवाधारी है, वो कभी भूखे नहीं रहेंगे, डबल सेवा करेंगे तो डबल रोटी मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी जो हम मेथड सुने वो नया ही मेथड है और ये करने वाला भी नया ही है, मेथड है कि तीन पॉइंट मुरली से निकालने जो कल चलने वाली है, तुरंत दान महापुण्य का रहस्य में से तीन पॉइंट निकालना है और तीनों पॉइंट की लिस्ट निकालना है। तो हमने तीन पॉइंट निकाला है, एक तो वृक्ष की शोभा, दूसरा है संगम युग, तीसरा है तुरंत दान महापुण्य। तो वृक्ष की शोभा अर्थात क्या, तो कुछ इसमें से जो पॉइंट होगा जो मुरली के अंदर की है और कुछ बाहर से भी लिया है। वृक्ष की शोभा अर्थात वृक्ष की विस्तार, ये वृक्ष की शोभा है, बाबा ने मुरली में बताया है। वृक्ष की शोभा अर्थात पत्ते, पत्ते में भी दो, एक कोमल पत्ते और एक सख्त पत्ते, तो गिरे हुए नहीं। तो पत्ते दो प्रकार की, उसके बाद में फूल, फूल ही वृक्ष की शोभा है। फूल में भी जो फूल जो फल देने वाले एकदम छोटा छोटा छोटी छोटी होती ना कली, वो भी वृक्ष की शोभा ने, वो तो फूल निकलते समय को कली बोलते, आप फल लगते समय उसको क्या बोलते पता नहीं, लेकिन वो उसके बाद में फल लग जाती है तो उसको केरी, केरी आम के जो छोटे को बोलते ना केरी, उसके छोटे को हमारे नेपाल में टुकला बोलते हैं मैथिली में, और इधर क्या बोलते पता नहीं, इसलिए हमने केरी बना दिया। नेपाल में बोला, मेरा नेपाल नहीं बोला। तो उसके बाद में छोटा फल, कच्चा फल, पका हुआ फल, ये वृक्ष की क्या है तो शोभा है। फल से लतपत वृक्ष वृक्ष की शोभा है, लतपत एकदम भरा हुआ, एकदम फूल लदे हुए नहीं। अब इस तो लतपत माना ये भी बोलते, बहुत सारे जो फल होते उसको भी लतपत बोलते, डालिया टाल टालिया और टहनी, ये भी क्या है तो वृक्ष की शोभा है। हरियाली वृक्ष की शोभा है, छाया देना वृक्ष की शोभा है, और सबसे बड़ी शोभा क्या है तो हमें ये दान देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये क्या है तो वृक्ष की शोभा है। फिर संगम युग, संगम युग को क्या बोलते, तो आज की मुरली में बाबा ने क्या बोला, तो लिप युग है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का युग है संगम युग, श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का युग है संगम युग, मनुष्य से देवता बनने का युग है संगम युग, भगवान से मिलन मनाने का युग है संगम युग, भगवान के साथ रास करने का युग है संगम युग, भगवान से शादी रचाने का युग है संगम युग। ये 35 है। ज्ञान की भू भू करने का युग है संगम युग, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचने रचाने का यज्ञ है, रचने रचाने का समय है संगम युग, कथनी और करनी को समान बनाने का युग है संगम युग, ब्रह्मा भोजन मिलने का समय कब है संगम युग, बाबा मम्मा दादी दीदियों से मिलने का युग है संगम युग, सत्य बाप को प्रत्यक्ष करने का युग है संगम युग, 500 रूप के अभ्यास करने का युग है संगम युग, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने का युग कौन सा है संगम युग, नवयुग निर्माण करने का युग है संगम युग, परमात्मा अवतरण तो बोल दिया, समर्पण समारोह मनाने का युग है संगम युग, समर्पण होने का युग है संगम युग, भगवान पर कुर्बान जाने का युग है संगम युग, भगवान से पढ़ने का युग है संगम युग, एक नामी और एको नामी बनने का युग है संगम युग, देह अभिमान और देह भान को भुलाने का युग है संगम युग, नर्क को स्वर्ग बनाने का तो शायद बोल दिया था, जंगल को मंगल करने का समय कौन सा है संगम युग, हद को बेहद में बेहद का वर्षा लेने का युग है संगम युग, भगवान से सर्वाधिकार लेने का युग है संगम युग, उच्च पद पाने का युग है संगम युग, तन मन धन सफल करने और कराने का युग कौन सा है? संगम युग। कदमों में पदम जमा करने का युग है संगम युग, ऊंची लॉटरी लेने का युग है संगम युग, भगवान से सर्व अनुभव प्राप्त करने का युग है संगम युग, मेरा बाबा कहने का युग संगम युग, माया को हराने का, माया को परास्त करने का युग है संगम युग। तो ऐसे तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन इतना लिस्ट निकाला है। तीसरा है तुरंत दान महापुण्य। तुरंत दान महापुण्य अर्थात बाबा ने कहा है ताजा फल खाना, सेवा का मेवा लेना, क्या है? तो तुरंत दान महापुण्य है। तुरंत दान महापुण्य वाली जो आत्मा होती है ना, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, मैं ही बनूंगा, मुझे ही नंबर वन में आना है, बाबा तो साथ है, ऐसे शब्द नहीं निकालेंगे। ताजा फल को सूखे फल बना करके नहीं खाएंगे, वो ताजा को ताजा ही खाएंगे। उसके बाद में जो भी सेवा के व अच्छे पुरुषार्थ के संकल्प आएंगे वो तुरंत कर लेंगे। ब्रह्मा बाप समान संकल्प बोल और कर्म होगा उनका, फॉलो फादर करेंगे वो। तुरंत दान महापुण्य आत्मा, समय प्रमाण जो भी उनको श्रीमत मिलेगा, समय प्रमाण उन्हें जो भी श्रीमत मिलेगा वो क्या करेंगे, फॉरेन प्रैक्टिकल मिलाएंगे। सेवा का जब भी चांस मिलेगा तो उसे क्या करेंगे, तो स्वीकार करेंगे और शक्ति के अधिकारी बनेंगे। सेवा का मेवा मिला, झाटकू बनना, झाटकू हाँ, नेपाल में एक, आप कई बार मुरली में भी आते ना कि दशहरी वाली बात, तो दशहरी में जो बलि प्रथा जो होते ना, तो जो भी होता है बकरे भैंसा वो सब बहुत सारे को कट करते, तो पहले उसको स्नान कराते, फिर जब काटना होता है ना तो फिर ऐसे पानी उनी रखते, फिर ऐसे वो गर्दन करता है, गर्दन ऐसे किया मना देवी माँ ने स्वीकार किया, फिर कट करते, तो उसको झाटकू बोलते हैं। ठंडा पहले ही स्नान करा देते उसको, तो ठंडा का फीलिंग नहीं रहता है। सोचा और किया अर्थात प्रत्यक्ष फल को पाया, अर्थात तुरंत दानी महापुण्य आत्मा बन गए। डायरेक्शन मिलते ही, डायरेक्शन बाबा के द्वारा, निमित्त आत्माओं के द्वारा डायरेक्शन मिलते ही उसी उमंग से उसी समय करना, अर्थात तुरंत दान महापुण्य आत्मा बनना है। उसके बाद में तुरंत दान महापुण्य अर्थात सदके का फौरी असर अच्छा कर्म है, ये उर्दू भाषा है। सदके का फौरी असर, सदके का फौरी असर अच्छा कर्म है। हाँ अच्छा, ओम शांति। तो जो हमने संगम युग की महिमा सुनी, तुरंत दान तुरंत दान महापुण्य के बारे में जो हमने सुना, या तो वृक्ष की शोभा, तो दुनिया की वृक्ष की ऐसे हरियाली, तो हमारे जीवन में भी हरियाली हो, हमारे ये जो ब्राह्मण जीवन का जो वृक्ष है, जो फल से लदा हुआ हो, लतपत हो, इसमें कली भी हो, फूल भी हो, तो पत्ते भी हो, और पके हुए फल भी हो, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, वृक्ष के हमेशा देने की भावना होती है, तो हमारे दिल के अंदर में हमेशा क्या हो, तो देने की भावना हो, लेने की भावना नहीं। कई बार ये होता है कि हम सेंटर पे जाते हैं, चाहे कई बड़ों के पास जाते हैं, वो मान लीजिए बिजी है, हमारी बात को अगर नहीं सुनते तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हम बताओ हम इतना गए थे, इतनी बात लेके गए थे, लेकिन हमारा तो सुना ही नहीं, अपने में ही बिजी थे, देखो बाबा कितना ध्यान रखता था, मम्मा कितना ध्यान रखती थी, लेकिन ये तो ऐसे ही कुर्सी मिल गया तो बन गए बाबूजी, ऐसे भी समझते हैं। तो ये सब हमें नहीं सोचना है, हमें हमेशा क्या करना है, तो देना है, देना है, देना है। ओम शांति।
कल की मूल्य में कुछ वार्निंग पॉइंट है, सावधानी, चेतावनी जिसको कहते हैं। कई डिपार्टमेंट्स हैं जो कुछ वार्निंग देते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको मानना कंपल्सरी होता है। ऐसे ही कुछ बाबा ने शब्द बताए हैं तो हम सबको भी उसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। इस मुरली के आधार पर कुछ पॉइंट निकाले हैं जिसमें से सात हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। समझदार वो हैं जो समय प्रमाण, जो भी श्रीमत मिले, जो भी डायरेक्शन मिले, अमल में लाएं। कहते हैं कल कल करेंगे तो काल खा जाएगा। मुरली में घरीबाजी भी कर ली है कि बासी फल खाने वाले ज्यादातर बीमार पड़ते हैं, इसलिए ताजा फल जो खाता है वो सदा तंदुरुस्त रहता है। तो मुरली में इतने ताजे फल मिलते हैं, उसको खाएं और तंदुरुस्त रहें और औरों को भी तंदुरुस्त बनाएं। दूसरा है, बासी फल खाना, रुखी सुखी बनना, अपने भाग्य को लात मारना था, जन्म जन्म के तकदीर को लकीर लगाना, इसमें संभल जाओ, समझदार बनो, भाग्य को ठुकराना अलबेला मत बनो। स्वप्न में भी संकल्प में भी भाग्य भी कमजोर ना हो। दूसरा पॉइंट है, कर लेंगे हो जाएंगे, होना तो जरूर है, बनना तो पहला नंबर ही है, आना तो माला में ही है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगा, इसमें अलबेले मत बनो। तीसरा नंबर है, समय प्रमाण मंजिल अर्थात संपूर्णता की स्थिति तक पहुंचने के लिए सदा काल का तीव्र गति बनाना है, नहीं तो पश्चाताप के लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। चौथा नंबर है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा दिन प्रतिदिन सहज तरीके से हम सबको समझा रहे हैं, क्योंकि बाबा का हम बच्चों से प्यार है, अति स्नेह है, तो जो शिक्षाएं सावधानी देते हैं उसको अमल में लाएंगे तो उसमें हमारे फायदे हैं। इसलिए कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। कोई भी भाग्य की रेखा बेला के प्रमाण ही सुनाते व बनाते हैं, इस कारण बेला बदलने के से वायुमंडल वृत्ति वाइब्रेशन सब बदल जाता है। बाबा ने मुरली में कहा है, ये डायरेक्शन मिला और उसी बेला में उसी उमंग से किया, ऐसी सेवा ताजा फल अर्थात मेवा मिलता है। जिसको सहर्ष हम स्वीकार करें अर्थात शक्तिशाली आत्मा बन स्वतः ही तीव्र गति में चलते रहें, तो कहते हैं कल करे सो आज, आज करे सो अब, ये सब जानते हैं। ये पांचवा पॉइंट है। फिर कहेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो भी श्रीमद् प्रमाण जिस रूप से मिलते हैं उसी समय पर उस रूप से प्रैक्टिकल में लाने से सदा ही ब्रह्मा भाव समान तुरंत दानी महापुण्यात्मा नंबर वन में आ जाएंगे। ये छठा पॉइंट है, समझ जाओ संभल जाओ, नहीं तो आखिर धर्मराज की डंडे पड़ेंगे, बाबा भी धर्मराज को साथ देंगे। हम जानते हैं साकार सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा बाप है, साकार रूप में पालना का भी पाठ बाबा ने बजाया। हम साकार रूप में पाठ बजाने वाले बच्चों से विशेष स्नेह है, जिससे स्नेह होता है उसकी कमजोरी अपनी कमजोरी लगती है, इसलिए ब्रह्मा बाबा ने हम सबको ये इशारा दे रहे हैं। इसलिए इस इशारे को समझ जाएं संभल जाएं, नहीं तो आखिर धर्मराज भी धर्मराज के भी डंडे पड़ेंगे, बाबा भी धर्मराज को साथ देंगे। सातवां पंडे, ये जन्म जन्म के बाजी है, ये मौका हाथ से छूट ना जाए। ब्रह्मा बाबा के नैनों के रतन है हम, नूरे रतन। ब्रह्मा बाबा के नैनों में बसे समाये हुए बाबा के, यही कहते हैं कि मेरे बच्चे, मीठे बच्चे। अपने सरने में भी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। नाम रूप से ज्यादा समय ब्रह्मा बाप के ही साथ रहते हैं जन्म जन्म, तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख चलना पड़ेगा, नहीं तो जन्म जन्म के बाजी हाथ से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये सात पॉइंट था।
ओम शांति। कल की मुरली से स्वमान साथ निकाले हैं, उसमें मैं विधाता वरदाता बाप की स्नेही, बुद्धि की स्पष्टता और स्वच्छता से हर बोल, हर कर्म और हर संकल्प से समीप आत्मा हूँ। दूसरा है, मैं सदा स्वमान, मैं सदा तुरंत दान महापुण्य करने वाली आत्मा हूँ। मतलब बाबा की मुरली से जो पॉइंट सुनते हैं तुरंत धारण करना। तीसरा है, मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी, हर संकल्प हर सेवा का मेवा खाने वाली, सदा शक्तिशाली फॉलो फादर और फॉलो मदर करने वाली आत्मा हूँ। चौथा है, मैं सदा ब्रह्मा बाप के संकल्प के को साकार में लाने वाली, देश विदेश और चारों ओर से सेवा समर्थ समीप आत्मा हूँ। पांचवा है, मैं चैतन्य महातीर्थ पर सेवा कर स्थूल सेवा वातावरण और वायुमंडल तन मन से महान रहने, तन मन और सदा बिजी रहने वाली महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। छठा पॉइंट है, मैं बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ कर और सेवा में सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। और सातवां पॉइंट है, मैं निमित्त और निर्माण चित्त बन मन बुद्धि से प्रभु अर्पण होने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। तो कल जो मुरली चलने वाली है संडे को, उसमें से फ्रेजेस एंड ईडियम्स कहावते और मुहावरे निकालने के लिए कहा था, इसलिए चेंज सुडोको मेथड दिया था, लेकिन वो सुडोको मेथड इतना इजी नहीं है। क्रॉसवर्ड कहा मैंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं क्रॉसवर्ड नहीं, फिर ये मेथड दिया नया कहावते और मुहावरे निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो हेडिंग में ही है, तुरंत दान महापुण्य, ये सबसे पहला जो मुहावरा है कि जो भी संकल्प आता है करने का उसी समय वो संकल्प करना चाहिए। जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि सोचा और किया, तो इसका एक एग्जाम्पल है कि जब हम बचपन में स्कूल में जाते थे तो एक देखते थे, एक बूढ़ा व्यक्ति हमेशा लूना पे बहुत सारे बिस्किट्स और ब्रेड और हाँ सब लेके टोस्ट वगैरह लेके बांटता था, जो भी जानवर आदि है या जो भी गरीब लोग होते थे उनको बांटता था। तो बाद में मालूम पड़ा वो ज्ञान में आ गया, ज्ञान में आया और 6-8 महीने हुए थे ज्ञान में, और काफी पैसे वाला व्यक्ति था वो। तो उसने बिल्डिंग बनाई थी लगभग 14-15 करोड़ या 20 करोड़ की, 3 फ्लोर का और ये था। तो उसको एक दिन शाम को थोड़ा हार्ट में पेन हुआ, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो छोटा सा अटैक, माइक्रो अटैक था, ऐसा कोई ज्यादा डरने की बात नहीं थी। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, 1-2 दिन के बाद में आपको छोड़ देंगे, ज्यादा कुछ इतना ये नहीं है। लेकिन उसने उसी समय रात को 8 बजे ही वकील को बुलाया और सेंटर की बहनों को बुलाया और कहा कि मुझे ये जो बिल्डिंग बनाई है मुझे देना है, यज्ञ में देना है, सेंटर देना है। तो उसने अपने बच्चों को भी बुलाया, तो उनके बच्चों ने कहा कि नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, हमारे पास से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सेंटर के बहनों ने कहा कि अभी इतना क्या जरूरी है, आप हॉस्पिटल से घर पे आ जाओ और उसके बाद में करेंगे 1-2 दिन के बाद में, इसमें इतना जल्दी क्या है मतलब ऐसे। तो उसने कहा कि नहीं, बस मुझे अभी करना है करके, और उसी समय सारा एग्रीमेंट वगैरह हुआ, सब कुछ हो गया, और रात को वो सोया तो सवेरे उठा ही नहीं फिर ऐसे। तो ये है तुरंतदान महापुण्य। और एक दूसरा कुमार, एक दूसरा कुमार था जो कि काफी पैसे वाला, बचपन से लगभग ज्ञान में, लगभग 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी, और कहता था कि सब कुछ बाबा का ही है, सब कुछ बाबा का ही है, ऐसे करके। और एक्सीडेंट हुआ, शरीर छोड़ दिया और एक रुपया भी नहीं दिया बाबा को। तो ये एग्जाम्पल है जो बाबा ने कहा तुरंत दान महापुण्य, सोचा और किया, तो ये उसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो बाबा ने मुरली में कहा कि, जो बाबा ने प्रश्न पूछा और बताया कि कारण को भी जानते हो, निवारण को भी जानते हो, सब कुछ जानते हो, विधि को भी जानते हो, सिद्धि को भी जानते हो, फिर भी कर क्यों नहीं पाते? सब कुछ पता है हमको, सब कुछ पता होने के बाद भी अगर कोई कारण को भी जाने, उसके निवारण को भी जाने और फिर भी चेंज न कर सके अपने आप को, तो उसे क्या कहेंगे? तो इसके लिए जो कहावत और मुहावरा है कि अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारना, खुद सब कुछ जानकर भी हम अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, ये। और तीसरा जो बाबा ने मुरली में कहा है कि आदत, आदत के बारे में बाबा ने बताया कि बच्चों की एक पुरानी आदत है कि कर लेंगे, तो ताजे फल को जो है सुखा कर खाते हैं, तो सब कुछ पता होने के बाद भी हम नहीं कर रहे, आदत जो हमारी बनी हुई है। तो आदत से को लेकर जो मुहावरा है कि क्या आदत से मजबूर क्या करे हुजूर, तो ये उसमें मुहावरा जो लगता है। नेक्स्ट जो है बाबा ने जैसे उसमें कहा है कि ब्रह्मा मुख वंशावली हम है, हम जो बाबा और मम्मा जो फर्स्ट राज्य अधिकारी है उनका क्या संकल्प था, सोचा और किया, तो आप बच्चे भी ब्रह्मा मुख वंशावली है। हम क्या कहते हैं अपने आपको? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते। तो हम एक ही परिवार के हैं, तो एक ही परिवार के जो लोग होते हैं तो उनमें कुछ न कुछ समानताएं आपस में होती है, तो उससे मिलता जुलता जो मुहावरा है कि एक तवे की रोटी क्या मोटी क्या पतली, नहीं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक्चुअली वो निगेटिव वे में आता है वो, ये जो है एक ही तवे की रोटी क्या मोटी क्या पतली, पॉजिटिव वे में आता है क्या मोटी, हाँ। तो ये मतलब एक तवे में हमने रोटी डाली है कोई भी, तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, कहीं पे एकदम पतली हो कहीं पे थोड़ी मोटी, बाकी एकदम ही कहीं पे एकदम मोटी हो इतनी और एकदम पतली वैसा नहीं हो सकता, और सीखेगी तो एक जैसे ही सीखेगी, थोड़ा बहुत अलग हो बात अलग है। तो वो हो गया। और नेक्स्ट जो इसमें मुरली में बाबा ने कहा है कि जैसे एक बताया बाबा ने कि ये जो दिल्ली का टर्न था और उसके साथ में महाराष्ट्र और कर्नाटक साथ में थे, और बाबा ने कहा कि इसमें जो है विदेशी भी आ गए, तो विदेशी बाबा ने कहा चुंगे, चुंगा माना जो ऊपर से एक्स्ट्रा थोड़ा डालते हैं ना वो चुंगा, तो उसको जो कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना अपना फायदा ले लेना, उसमें मौके का फायदा उठाना, तो ये मौका देख के चौका मारना। तो ये जो थे पांच कहावतें और मुहावरे जो निकाले मुरली में से। ओम शांति।